ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 10 श्लोक संख्या 14, 15, 16, 17। श्लोक संख्या 14। राजा कहे तौर तुम्हें गायते केने दिले पाय पड़ी रत्न करी केने न रखले। यह सुनकर राजा ने कहा आपने उन्हें क्यों जाने दिया, आपने उनके चरण कमलों पर गिरकर उन्हें यही क्यों नहीं रखा। भट्टाचार्य कहे तेहो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र साक्षात श्री कृष्ण तेहो नहे परतंत्र। सर्वम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वे पूर्ण तथा स्वतंत्र हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण होने के कारण वे किसी पर आश्रित नहीं है। श्लोक संख्या 16। तथापि राखते तौर बहु यत्न कैलू ईश्वर स्वतंत्र इच्छा राखते नारिलो। फिर भी मैंने उन्हें यहाँ रखने के लिए बहुत प्रयत्न किया किंतु वे परम भगवान हैं तथा पूर्णतया स्वतंत्र है, अतः मैं इसमें सफल नहीं हो सका। तो आज का जो श्लोक है आप लोग सब पढ़ेंगे। राजा कहे भट्ट तुम्हें विज्ञ शिरोमणि तुम्हें तार कृष्ण कहे ताते सत्य मानी। राजा कहे भट्ट तुम्हें विज्ञ शिरोमणि तुम्हें तारे कृष्ण कहे ताते सत्य मानी। राजा कहे भट्ट तुम्हें विज्ञ शिरोमणि तुम्हें तारे कृष्ण कहे ताते सत्य मानी। राजा कहे, राजा ने कहा भट्ट सार्वभौम भट्टाचार्य तुम्हें आप विज्ञ शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ अनुभवी विद्वान तुम्हें आप तारे उनको कृष्ण कह भगवान कृष्ण कहते हो ताते आपका वचन सत्य मानी मैं सत्य स्वीकार करता हूँ। अनुवाद उत्तर पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की जय। राजा ने कहा कि हे भट्टाचार्य मैं जिन्हें जानता हूँ उनमें से आप सर्वाधिक विद्वान तथा अनुभवी व्यक्ति हैं, अतः जब आप श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण कहते हैं तो मैं इसको सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे पीछे दोहराइए। राजा ने कहा हे भट्टाचार्य मैं जिन्हें जानता हूँ उनमें से आप सर्वाधिक विद्वान तथा अनुभवी व्यक्ति हैं, अतएव जब आप श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण कहते हैं तो मैं इसको सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य आध्यात्मिक विज्ञान में आगे बढ़ने का यही उपाय है आचार्य या प्रामाणिक गुरु के शब्दों को स्वीकार करना चाहिए जिससे आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग साफ हो सके, यही सफलता का रहस्य है। हाँ, मनुष्य का मार्गदर्शक ऐसा आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जो पूर्ववर्ती आचार के आदेशों का बिना विचलित हुए दृढ़ता से पालन करने वाला हो। गुरु जी जो भी कहें उसे शिष्य को स्वीकार करना चाहिए, तभी सफलता निश्चित होती है, यही वैदिक पद्धति है। सर्वम भट्टाचार्य एक ब्राह्मण एवं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे जबकि प्रताप रूप एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय राजा विद्वान ब्राह्मणों एवं संत पुरुषों के आदेशों के पालन श्रद्धा पूर्वक किया करते थे। इस तरह वे अपने देश का शासन चलाते थे, इसी प्रकार वैश्य राजा के आदेशों का पालन करते थे और शूद्र इन तीन उच्चतर जातियों की सेवा करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपस में मिलजुल करके रहते थे और अपने नियत कर्मों का पालन करते थे। फलस्वरूप समाज में शांति थी और लोग कृष्ण भगवान के कर्तव्यों का पूरा करने में समर्थ थे। फलतः वे इस जीवन में सुखी थे और भगवत धाम वापस जाने में सक्षम थे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रेम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत ही सुंदर ये वार्तालाप चल रही है राजा प्रतापरुद्र के बीच में और सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में। जब प्रतापरुद्र को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए और यहाँ से क्या हो गए, चले गए, तब प्रतापरुद्र कहते हैं कि आप उन्हें क्यों जाने दिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बता रहे हैं कि देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और वे पूर्ण हैं तथा स्वतंत्र हैं, उनको उनकी मर्जी से ही रोका जा सकता है, माने उनको जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। फिर बोलते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया रुकने का, लेकिन वो नहीं रुके क्योंकि उनको जाना था दक्षिण भारत में और मैं उनको रोकने में सफल नहीं हो पाया। फिर राजा कहते हैं कि हे भट्टाचार्य जी, मैं जिन्हें जानता हूँ उनमें से आप सर्वाधिक विद्वान तथा अनुभवी व्यक्ति हैं, अतः जब आप श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण कहते हैं तो मैं इसको सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। ऐसा प्रतापरुद्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं 99% जो कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण नहीं मानते। पता है बात, चैतन्य महाप्रभु एक महान पुरुष थे ऐसा लोग जानते हैं, और जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे तो किताब में श्री चैतन्य महाप्रभु का एक टॉपिक होता, सिर्फ एक पेज का, उसमें भी यही बताया गया था कि वेस्ट बंगाल में आए थे और एक महान भक्त थे, क्या बोलते हैं, महान पुरुष थे ऐसा। कृष्ण स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु, ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं। ये जब गौड़ी मठ, जब चैतन्य महाप्रभु धरती पर आए, प्रचार प्रसार हुआ, तो श्री प्रभुपाद जी और जो पुराने आचार्य हमारे वर्तमान आचार्य, इनके द्वारा ये प्रचार प्रसारित किया गया, नहीं तो लोग जो है जानते ही नहीं थे। अब हम लोग जान गए कि चैतन्य महाप्रभु क्या है, स्वयं कृष्ण, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नायन, कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्या है, राधा और कृष्ण ही है, राधा कृष्ण दोनों को मिल करके चैतन्य महाप्रभु युगल अवतार, राधा रानी और कृष्ण दोनों मिल करके इस धरती पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और क्या लेकर के आए, कौन बताएगा, हरिनाम लेकर के आए, क्या लेके आए, अब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले ही हरिनाम को प्रकट कर दिया था, ये बात मानो नहीं, चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले सबसे पहले किसको प्रकट किया, हरिनाम को। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब पैदा हुए, प्रकट हुए, एक नीम वृक्ष के नीचे तो रोना शुरू कर दिए। ये स्वाभाविक है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है, रोता है। देखिए जब बच्चा पैदा होता है और नहीं रोता है तो जो दाई गर्भवती मारती हैं कि रोए, ऐसा जानते क्यों किया जाता है कि बच्चा सब ठीक ठाक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं है, इसे रुलाया जाता है, सिस्टम है। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो वो भी रुलना शुरू कर दिए, और जरूरत से ज्यादा रुलना शुरू कर दिया। अब चुप कराना चाहिए था, वो चुप ही नहीं हो रहे थे, इस तरह से रुलना शुरू किया। तब जानते हैं कैसे चुप है, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। जब वो हरी बोल बोलने लगे तो चुप हो जाते थे। तब सबको पता चल गया कि ये जो निमाई बालक है इसको हरी बोल क्या है, पसंद है। तो जब भी वो रोते थे तो उनको यही बुलाते हरी बोल, वो चुप हो जाते थे। और चेतन महापुरुष हमेशा हरि नाम सुनना चाहते थे, हरी बोल। तो जब उनको हरि नाम सुनने की इच्छा होती रोने लगते थे, और फिर सब बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चेतन महाप्रभु इसलिए उनका नाम निमाई पड़ा क्योंकि नीम के नीचे उनका जन्म हुआ। तो चेतन महाप्रभु पहले ही हरिनाम दे, क्योंकि हरिनाम से उनको चुप होना था, इसलिए हरिनाम को पहले प्रकट कर दिया ताकि चुप कराने का एक ही तरीका था उनसे, रोने से। तो हरिनाम पहले आ गए। तो कलि काले नाम रूप कृष्ण अवतार, तो इस कलयुग में भगवान नाम के रूप में क्या हुए, प्रकट हुए। और प्रभु जो है वही राधा रानी के साथ मिलकर के चैतन्य महाप्रभु बन के आए, स्वयं हरिनाम लेकर के आए। इसीलिए बताया गया है कि गोलोक के रे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये जो हरिनाम संकीर्तन है जिसका हम लोग जप करते हैं कीर्तन करते हैं, ये कहाँ से आया हुआ, गोलोक धाम से है, जहाँ पे कृष्ण रहते हैं राधा रानी के साथ। वही राधा गोलोकवासी जो भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वो हरिनाम लेकर के आते हैं। इसलिए हम सबको हरे कृष्ण नाम का क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि यही हरिनाम हमको कहाँ ले जाएगा, वापस गोलोक लेके जाए। तो लोग जो भाग्यशाली हैं वही हरिनाम लेते हैं, तो हरिनाम सबको लेना चाहिए। तो ये प्रताप रुद्र जो है बोले कि आपने कह दिया कि चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण है, तो हमको विश्वास हो गया। इसीलिए जब हमारे प्रचारक किसी को समझाएं कि जो चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण है, तो चूंकि हमारा जो प्रचारक होता है एक प्रामाणिक होता है, वो कहता है तो लोगों को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम वही बात बोलते हैं जो हमारे आचार्य कहते हैं एज इट इज, हमें विश्वास करना चाहिए। तो राजा प्रताप रुद्र जो कि क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस बात को स्वीकार किया। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही सफलता का रहस्य है, अर्थात गुरु जो भी आपको कहता है उसे हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि और गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि जो पूर्ववर्ती आचार हैं वही वो भी बोलता है जो करते हैं। लेकिन संजोग से आज इस कलयुग में ऐसा हो गया है कि गुरु अपने आप को स्वयं भगवान स्वीकार कर लेते ना, कितने गुरु जो है अपने आप को कृष्ण या कृष्ण का अवतार मान लिया और अथोक के भाव शिष्य बना दिया, अशिष्य उनको क्या करते हैं, हाँ भगवान कृष्ण साथ में डांस करते हैं, अब बाद में गुरु जी जेल चले जाते हैं। बाबा लोग गलत है, गुरु कभी भी भगवान नहीं बनता, ये जान लीजिए। आध्यात्मिक गुरु हमेशा अपने को क्या समझता है, दास समझता है। जैसे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी क्यों सफल हुए कौन बताएगा, प्रभुपाद जी की सफलता का राज क्या है कि उन्होंने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो आदेश दिया गया था उनको अक्षरशः अपने जीवन में क्या किया, पालन किया। उन्होंने क्या आदेश दिया था, ये आदेश दिया था कि जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इस सब का आप अंग्रेजी भाषा में क्या करिए, अनुवाद कीजिए, और अनुवाद करने के बाद फिर विदेश में जा करके प्रचार कीजिए। अब प्रभुपाद जी यही किए, पहले वृंदावन मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में एक छोटे से कमरे में बैठ करके अनुवाद किया है ना, और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी अमेरिका गए। और जानते हैं आज ही के दिन अमेरिका पहुंचे थे, पता है आपको, प्रभुपाद जी आज ही के दिन अमेरिका पहुंचे थे, आज उनकी चर्चा भी हो रही। एक महीने के बाद प्रभुपाद जी, आज 1 अक्टूबर है ना, आज 1 अक्टूबर को श्री प्रभुपाद जी अमेरिका के धरती पर अपना चरण रखा। और अमेरिका कितना भाग्यशाली है कि प्रभुपाद जी का चरण पड़ते ही वहां पे भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 आरंभ हो गया। जब प्रभुपाद जी गए, आप जानते हैं कि प्रभुपाद जी का जन्म भी वृक्ष के नीचे हुआ था, पेड़ के नीचे हुआ था, पता है ना कौन सा पेड़ था वो, कटहल का, कटहल देखे कटहल। तो प्रभुपाद जी का जन्म अपने नानी के घर कटहल वृक्ष के नीचे हुआ था, और कटहल का वृक्ष अभी भी है, वहां बोर्ड लगा हुआ है कि यही वो वृक्ष है कटहल का, जहां पे इस्कान के फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदान स्वामी से प्रभुपाद जी प्रकट हुए, वहां लिखा हुआ है। तो जब भी कलकत्ता जाने का अवसर मिले आप जाइए और उस वृक्ष की परिक्रमा कीजिए, दर्शन कीजिए कि वही वो जगह है, वहां पे उनकी नानी का घर अभी भी है, नानी जी का जो घर है जहाँ प्रभुपाद प्रभु अभी है। तो देखिए कि चैतन्य महाप्रभु नीम के नीचे वृक्ष के नीचे प्रकट हुए, हमारे प्रभुपाद जी भी वृक्ष के नीचे प्रकट हुए। और जब अमेरिका गए न्यूयॉर्क सिटी में, तो वहाँ पे एक वृक्ष है टॉमकिन स्क्वायर पार्क, वहां पे भी एक वृक्ष है, वहां पे लिखा हुआ है कि दिस इज द ट्री, यही एक वह वृक्ष है जहाँ पे इस्कान की शुरुआत हुई थी। तो पेड़ के नीचे ही इस्कान की शुरुआत हुई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज का दिन हम सब भक्तों के लिए बड़ा परम पवित्र दिन है कि प्रभुपाद जी आज के दिन अमेरिका गए। अमेरिका प्रभुपाद जी नहीं पहुंचे होते तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते। प्रभुपाद जी वहाँ गए, खूब प्रचार प्रसार किया, फिर आए और पूरे दुनिया में प्रचार फैलता चला जा रहा है। तो भाई श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमें अपना गुरु का जो संदेश है, आदेश है, उसे हमें अक्षर से क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यही वैदिक पद्धति है और यही सफलता का राज है। और दूसरे स्टेंजा में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए ये जो संसार है ये किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। इस संसार की सृष्टि के निर्माणकर्ता कौन है, ठाकुर जी हैं, भगवान हैं। और भगवान गीता में बता दिए गए कि इस संसार को कैसे चलना चाहिए, इस समाज में कैसे हमको रहना ही चलना चाहिए। आज समाज के लोग क्यों परेशान हैं, क्योंकि भगवान के अनुसार चल ही नहीं रहे, सच है नहीं सच है, वो चल ही नहीं रहे, इसलिए हर इंसान परेशान है। क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं कि चातुर्वर्ण म्या सिस्टम, चार प्रकार के वर्ण और आश्रम मेरे द्वारे बनाए गए हैं, यानी वर्ण और आश्रम के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार व्यवस्था भगवान ने किया है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि ब्राह्मण मांसाहार करना शुरू कर दिए हैं, नशा करना शुरू कर दिए हैं। ये सच है कि नहीं सच है? आप चले जाइए मधुबनी वगैरह बिहार में, कई जगह यूपी भर, अब ब्राह्मण भी क्या है, ब्राह्मण नहीं रह गए हैं, ब्राह्मण भी मांसाहारी होते जा रहे हैं, नशा करते जा रहे हैं, चीलम गांजा पीते जा रहे हैं, है ना? हम देखते हैं हमारे गांव में भी जो ब्राह्मण लोग हैं, जब जाते हैं तो देखते वो बड़ी हैरानी होती है। क्षत्रिय का जो कर्तव्य होता है, क्षत्रिय अपना कर्तव्य करे, ब्राह्मण अपना कर्तव्य करे, वैश्य अपना कर्तव्य करे, शूद्र अपना कार्य करे, तब इस समाज क्या रहेगा, सुखी रहेगा। लेकिन अब शूद्र अपने आप को ब्राह्मण बना रहा है। आजकल तो अगर आप शूद्र शब्द कह दीजिए तो आप नहीं कर सकते, समाज उल्टा पुल्टा सब चल रहा है। इसलिए हर इंसान क्या है, परेशान है। परेशानी का मूल जड़ यही है कि समाज में हर वर्ग को मिला करके इस संसार चलता है। इसलिए इस समाज को चलाने, संसार चलाने के लिए ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए और शुद्ध को चाहिए। सब मिल करके अगर अपना तालमेल बैठा कर रहेंगे तभी इस संसार के लोग क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब एक दूसरे की मिलजुल करके, अंडरस्टैंडिंग करके सेवा करनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। तो वर्ण और आश्रम, तो ये जो है आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चार प्रकार के क्या है, आश्रम है। तुम्हें 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में अवश्य रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम का जो नियम है उसको हमको जानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य नियम का ये नहीं सुनना चाहिए कि हम ब्रह्मचारी जो कपड़ा होते सफन कल्पन लिया तो हम ब्रह्मचारी बन गए, राइट? हमारा मन जो है बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए। वास्तव में जो इंद्रियां हैं उनको नियंत्रित करने की जो समय होता है वो ब्रह्मचर्य जीवन में होता है। और उसमें क्या होता है कि हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए शास्त्रों का, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करें, पठन पाठन करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाने का क्या करें, प्रयास करें। और उसके बाद जब 25-26 साल के हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, ऐसा बताया गया। पहले आप ब्रह्मचर्य आश्रम रहिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे तो आप रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो कठिन तपस्या है ब्रह्मचर्य के नियम का पालन कठिनाई से करना पड़ेगा। जब आपको कठिनाई होती है कि हम नहीं पालन करते तो गुरु महाराज जी से आदेश लेकर के आप गृहस्थ आश्रम में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, कि कोई जबरदस्ती थोप नहीं सकता इस चीज का, आप जान लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जब जाते हैं तो गृहस्थ आश्रम के क्या नियम है उसको हमको जानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। अब गृहस्थ आश्रम का नियम क्या है कि हमें आदर्श गृहस्थ जीवन जीने के लिए हमारे घर में एक मंदिर होना चाहिए, ठाकुर जी के विराजमान करना चाहिए। और जब मंदिर हो तो हमको इस्कॉन के भक्तों के साथ संपर्क में आकर के कैसे भगवान की पूजा करना चाहिए, कैसे उनकी आरती करनी चाहिए, कैसे उनका श्रृंगार करना चाहिए, कैसे उनको भोग लगाना चाहिए, ये बहुत पद्धति जानी चाहिए। फिर अपने घर में भी ठाकुर जी को उठाइए, स्नान कराइए, श्रृंगार करिए और फिर उनको सात्विक भोजन जो भगवान पसंद करते हैं उसका भोग लगाइए, फिर प्रसाद के रूप है। अर्थात गृहस्थ उसे कहते हैं जो घर में रह करके अब भगवान के अनुसार अपनी दिनचर्या करता है। आप अपना बिजनेस करिए, व्यापार करिए, जो कार्य करिए, लेकिन साथ साथ भगवान की भक्ति भी करिए, पूजा भी करिए और अपना जीवन भगवान के अनुसार चलाइए, उसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। लेकिन एक होते गृह में भी आजकल जो समाज चल रहा है वो सोचते हैं कि शादी कर लेना है, क्या हो गया, गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर गए। सोचते हैं कि शादी कर लिया हम गृहस्थ बन गए, नहीं आप गृहमेधी बन गए। गृहमेधी उसे कहते हैं जो शादी तो कर लेता है लेकिन घर में भगवान को नहीं रखता, या रखता भी है तब भी वो मीट खाता है, मांस खाता है, नशा करता है, अवैध संबंध करता है, जुआ खेलता है, झूठ बोलता रहता है, अर्थात वो धर्म के अनुसार, अर्थात भगवान धर्म के प्रतिष्ठापक है उनके अनुसार वो जो नहीं जीता उसे क्या कहते हैं, गृहमेधी कहते हैं। शादी तो कर लेता है लेकिन गृहस्थ उसे नहीं कहते, वो गृहमेधी है। तो गृहस्थ के दो पार्ट हो गए, गृहमेधी और गृहस्थ। आप सोच सकते हैं कि हम गृहमेधी के में आते हैं या गृहस्थ आश्रम में आते हैं, तो दो कैटेगरी हो गई। तो ज्यादातर आप लोग देखेंगे कि लोग क्या है, गृहमेधी है। भगवान तो गीता में यहां तक बता दिए हैं कि अर्जुन पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और जल जो मुझे अर्पित करता है वो मुझे क्या करता है, मैं उसे खाता हूँ, स्वीकार करता हूँ, खाता हूँ। जब आप भोग ही न लगाएंगे तो भगवान क्या खाएंगे, भगवान तो खाने के लिए बोलते हैं, ये भी बताते हैं कि मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता हूँ। तो शास्त्र में तीन प्रकार का भोजन बताया गया है, सात्विक आहार, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। तो भगवान कौन सा आहार स्वीकार करते, भोजन सात्विक जो शतगुणी होता है भगवान उसे स्वीकार करते। भगवान को अंडा मटन चिकन नहीं चाहिए, भगवान ने गीता नहीं बोला है कि क्या अंडा मटनम चिकनम नहीं, भगवान क्या बोला, पत्रम पुष्पम फलम तेम, हमको उसका भोग लगाना चाहिए, खाना चाहिए। अब देखिए लोग क्या करते हैं कि घर में उनके फ्रिज होता है, अब फ्रिज में फल फूल भर देते हैं फल, लेकिन भगवान के सामने फल नहीं रखेंगे। भगवान रखे हैं घर में लेकिन भगवान के सामने फल नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, फ्रिज में। और जब दामाद आ जाता है तो निकालेंगे, उसको खिलाएंगे। और ठाकुर जी जो पूरे संसार के मालिक हैं, उनके घर के भी मालिक वही हैं, वो बेचारे से ताकते रहते हैं कि देखो हमको फल नहीं खिला रहा है, डायरेक्ट खिला दो से, ये गलत है। यदि आप भगवान को रखते हैं तो सबसे पहले फल काट कर किसको देना चाहिए, ठाकुर जी के सामने उनको अर्पित करना चाहिए, उसके बाद जो आपके अतिथियां हैं उनको क्या करना चाहिए, देना चाहिए। ये सिस्टम है, यही शिष्टाचार है। तो गृहस्थ, तो वही प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि जाति और वर्ण के अनुसार जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये आपस में मिलजुल कर रहे, हमें अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। आज दुनिया क्यों दिक्कत में है, उसका मेल कारण है कि जिसका जो वर्ण है उसके अनुसार वो कार्य नहीं कर रहा है। ब्राह्मण अपना कर्तव्य करे, क्षत्रिय अपना काम करे, वैश्य अपना बिजनेस व्यापार करें, शूद्र अपना काम करें, सब मिल जुल करके इस संसार में कार्य करें तो सब सुखी रहेंगे और सब भगवान के अनुसार अपना जीवन चलाएं। तो होता है गृहस्थ। तो गृहस्थ आश्रम सर्वोत्तम आश्रम, अच्छा आश्रम माना गया है, लेकिन ये तभी आप अच्छे गृहस्थ कहलाएंगे जब आप भगवान के अनुसार अपना जीवन क्या करेंगे, चलाएंगे। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं किस तरह से हमारा जो सिद्धांत है, देखिए साधना और सिद्धांत दो चीज बहुत जरूरी है। अगर जीवन सही ढंग से चलाना है तो प्रभुपाद जी ने अपने इस्कॉन संस्था में भी इस चारों आश्रम की व्यवस्था की है, है ना। आप ब्रह्मचर्य जीवन में रह करके आप भक्ति कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य नहीं पाते रह पाते तो आप गृहस्थ बन करके भी भक्ति कर सकते हैं, अगर आप गृहस्थ के बाद आप वानप्रस्थ बन करके भी भक्ति कर सकते हैं और सन्यासी बन करके भक्ति कर सकते हैं। चारों आश्रम प्रभुपाद जी ने हमारे यहाँ रखा, लेकिन जो साधना का प्रभुपाद जी ने दिया कि साधना हमें सबको करना है। आप चारों आश्रम में अगर रहते हैं, किसी भी आश्रम रहते हैं, लेकिन साधना में हमको क्या करना चाहिए, सबको आना है। इसलिए साधना के लिए प्रभुपाद जी ने सुबह 4:30 बजे मंगल आरती, फिर गुरु पूजा क्लास, 9 बजे तक का जो कार्यक्रम है इस साधना इसमें हमको बड़ी कड़ाई से इस पर क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो जब साधना मजबूत रहेगा और सिद्धांत जो हमारी फिलॉसफी है वो हमारे माइंड में क्लियर रहेगा, साधना और सिद्धांत जिसका मजबूत होता है वही भक्ति में आगे बढ़ता है। अब आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि राधा राधिका रमन की पूरी कृपा हमारे पर बरसे, ये तभी होगा जब आपकी साधना और सिद्धांत दोनों क्या होगा, मजबूत होगा, और अपनी जो इंद्रियां हैं उस पर नियंत्रण करने की कला आपके अंदर होगी, अर्थात अपनी इंद्रियों को आप नियंत्रित करने की कला में क्या होंगे, मास्टर होंगे, तब आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। बहुत जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ये सब बहुत जरूरी है। तो ये प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि समाज में पहले शांति थी, अब लोग कृष्ण भावनावाद के कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ थे, फलता वे इस जीवन में सुखी थे और भगवत धाम वापस जाने में पहले क्या लोग सब थे, तो पहले लोग क्या थे, इस तरह से थे, लेकिन जब से कलयुग लग गया है तो कलयुग में लोग जो हैं अपना अपना आचरण भूलते चले जा रहे हैं, ये उनकी समस्या है। जीवन का लक्ष्य पता ही नहीं है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य अगर पूछो तो जानते क्या बताएंगे, खाना पीना सोना और संतान उत्पन्न करना, ये उनके जीवन का क्या होता है, लक्ष्य होता है। सो उठना, उनकी दिनचर्या क्या होती है, जो लोग गृहमेदी होते हैं जिन्हें जीवन का लक्ष्य नहीं पता होता है, सुबह वो भी उठते हैं लेकिन उनकी दिनचर्या क्या होती है कि सुबह उठते ही, पहली बात तो सुबह उठते ही नहीं, उनका टाइम टेबल जैसे भक्त जो होता है वो 3:30-4 बजे उठ जाता है, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो 9 बजे के पहले 8 बजे के पहले नहीं उठेंगे, बहुत कम ऐसे लोग जो 5 या 6 बजे उठ जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो 1 बजे 12 बजे उठते हैं, क्योंकि वो रात भर जागते हैं और जब सुबह उठने का समय होता है तो वो सोने जाते हैं, ऐसा भी लोगों की दिनचर्या होती है, आप समझिए ना, माने पूरा सिस्टम उल्टा चल रहा है, शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध चल रहे हैं, इसीलिए हर इंसान क्या है, परेशान है। फिर जब वो उठेंगे तो उठते ही उनको क्या चाहिए, चाय चाहिए, उसका नाम रखा है बेड टी, बिस्तर वाली चाय, माने उठते ही उनको बेड टी चाहिए, उसके बाद फ्रेश हो करके कुत्ता लेकर टहलाने चले जाएंगे, टहलेंगे कुत्ता भी साथ में टहलाएंगे, अगर कुत्ता पाल रखा है तो बड़ा उल्टा सिस्टम हो गया। लेकिन एक भक्त है वो जब उस समय उठता है तो किसके लिए उठता है, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, जान ले उठते ही वो स्नान करेगा फिर मंदिर में आएगा भगवान का दर्शन करने के लिए, तो एक दिनचर्या, दिनचर्या से पता चल जाता है। तो हमें जीवन का लक्ष्य पता ही नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वही प्रभुपाद जी कहते धर्म बिना नर पशु समान, धर्म के बिना मनुष्य क्या है, पशु के समान है, हमें पशु जानवर की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए कि पशु भी खाता है सोता है संतान उत्पन्न करता है सुरक्षा रखता है, अगर इंसान इसी में लगा हुआ है तो इस अच्छा नहीं है। इसलिए आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आप जो हैं एक अच्छे भक्त बनिए, जीवन का जो लक्ष्य है उसको समझने का क्या करिए, प्रयास करिए। चैतन्य चरितामृत में बताया जो आज का भट्टाचार्य प्रताप रुद्र के बीच में चर्चा चल रही है, यही बता रहे हैं कि हमें ये विश्वास करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु क्या है, स्वयं कृष्ण है। भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला है, जब जगाई और मदाई ये भाई थे, तो जगाई और मदाई ये दोनों भाई थे लेकिन बड़े खूंखार थे, नंबर एक शराबी थे, मांसाहारी थे, वेश्यावृत्ति करते थे, बड़ा पापी थे, लुटेरे थे, मारते पीटते थे, मर्डर करते थे, मैं जितना भी पाप था ये जगाई मदाई क्या करते सब दोनों भाई मिल करते थे। एक बार क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु अपने ग्रुप के साथ कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे, तो ये जो जगाई मधाई रास्ते में मिल गए, और दोनों भाई खूब नशे में थे, शराब पी रहे थे। और उसके बाद एक भाई ने क्या किया, वो जो शराब पहले मटका होता है, अब आज लोग तो बोतल पीते हैं, पहले मटके मलते थे, गांव के लोग बेचारे मिट्टी का बर्तन होता था उसे बनाते थे, पीते भी थे पहले, तो जो मिट्टी का बर्तन का वो था है ना, वो उनके ऊपर फेंक दिया, नित्यानंद प्रभु को मार दिया है ना, नित्यानंद प्रभु को सर में चोट लग गई और गिर गए और खून बहने लगा। तो बेचारे जो दूसरे भक्त थे वो परेशान हो गए और क्या किया जाए। इतने में उन लोगों ने किसको बुलाया, चैतन महाप्रभु को याद किया, और चैतन महाप्रभु तुरंत वहां प्रकट हो गए। अब चैतन महाप्रभु कैसे प्रकट हो गए, भाई कृष्ण ही तो हैं, कृष्ण तो ही प्रकट हो गए, चैतन महाप्रभु आ गए। और जैसे चैतन महाप्रभु आए, देखा नित्यानंद प्रभु के सर से खून बढ़ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी ऐसी उंगली उठा दी, किसको बुलाना शुरू किया, सुदर्शन, दो बार बोला सुदर्शन सुदर्शन। ये सुदर्शन किसका है, कृष्ण का है, किसका है, कृष्ण का। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, इसीलिए वो अपने सुदर्शन को बुला रहे हैं, है ना, सुदर्शन सुदर्शन। जब दो बार बोल दिया, तीसरी बार बोलने ही नहीं दिया नित्यानंद प्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने पांव पकड़ लिया, चरण पकड़ लिया चैतन्य महाप्रभु का, कि प्रभु आप क्या कर रहे हो, महाप्रभु आप तो इस कलयुग में अवतार लिए हैं सिर्फ हरि नाम से, अपने नाम से इन सब पापियों का जीवों का उद्धार करने के लिए, सुदर्शन चक्र की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो हरि नाम से ही इनकी सुधार हो जाएगी। तो जो जगाई मधाई थे है ना, वो देख रहे थे सुन रहे थे कि जो को जिसको मैंने पत्थर मारा, जिसके हमने सर पे चोट दी खाने, वो मेरी सुरक्षा के लिए विनती कर रहा है, इसलिए इनको सुदर्शन चक्र से मत मारो है ना, कि जरूरत नहीं है। नित्यानंद प्रभु इतना सुन करके वो जगाई मधाई जो है उनका हृदय बदल गया कि जिसको मैंने मारा वो मेरे बचाने के क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। फिर चैतन्य महाप्रभु क्या हो गए, शांत हो गए, सुदर्शन चक्र नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई दोनों, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु चरणों पर गिर पड़ा, और जैसे ही इन लोगों के संपर्क में आया, ये सब क्या हो गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये भक्त बन गए, कीर्तन कर गए। यही चैतन्य महाप्रभु जो इस धरती पर आकर के हरि नाम से सबको क्या कर दिया, भर दिया। तो सम कृष्ण है, उन्होंने इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की कई लीलाएं हैं। एक और लीला जो याद आ रही है, जब चैतन्य महाप्रभु अपने कीर्तन मंडली के साथ झारखंड के जंगल की ओर जा रहे थे, नीलांचल की ओर जा रहे थे, हाँ, तो वहाँ पे जिस जब रास्ते जा रहे थे तो एक तालाब दिखाई दिया, तालाब समझते ना, कि तालाब गांव था, गांव के पास में एक तालाब था, और गुजर रहे थे उधर से इनकी टोली, तो उसी तालाब के पास एक धोबी था जो कपड़ा साफ कर रहा था। तो गांव में जानते धोबी कैसे सब कपड़ा साफ करता है, वो तालाब के किनारे तट पे एक पत्थर रखता है चौड़ा सा, और उसके बाद कपड़ा भिगो रहता है, एक कोना पकड़ के पटकता है, अब समझे ना, ऐसे पटक पटक करके वो साफ करता है, पीटता है धोबी, कहता धोबी या पछाड़, है धोबी इस तरह से पछाड़ता है तो सफाई कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु अपनी मंडली के साथ जा रहे थे, उनकी नजर तालाब में सफाई करने वाले धोबी पे पड़ी, चैतन्य महाप्रभु अपनी मंडली छोड़ करके धोबी के पास चले गए, तो मंडली वहीं खड़ी हो गई, वो लोग वहीं कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस धोबी के पास गए, कहा हे धोबी भाई, एक बार मुखे बोलो हरी बोल हरी बोल हरी बोल, कि हे धोबी भाई अपने मुख से एक बार हरी बोल बोल दीजिए। वो जो धोबी था देखा ही नहीं चैतन्य महाप्रभु की ओर, वो अपने पीठ में लगा हुआ था, ऐसे नीचे सर करके पीट रहा था। तो फिर दोबारा जो है चैतन्य महाप्रभु बोले कि हे धोबी भाई, एक बार मुखे बोलो हरी बोल हरी बोल हरी बोल, नहीं बोला तब तीसरी बार चेतन महाप्रभु ने क्या किया, नीचे बैठ गए, क्योंकि उसकी नजर कहाँ थी, नीचे थी कपड़े पर, तो इस तरह से बैठ गए कि उसकी नजर चेतन महाप्रभु नजर से मिल गई मैंने। तब नीचे बैठ करके धोबिया से बोलते हैं कि हे धोबी भाई, एक बार मुखे बोलो हरि बोल हरि बोल। तब जानते क्या किया उसने, कि मैं हरि बोल नहीं बोलूंगा, बोल दिया, वही तो बुला जाते, हरि बोल बोल दिया। उसे कहा जोर से बोला, मैं हरि बोल नहीं बोलूंगा, बोल दिया हरि बोल। तब चेतन बाप बड़े खुश है कि बोल दिया ऐसा कह करके उसको हृदय से लगा लिया। चेतन महाप्रभु जैसे आलिंगन किया और धोबी के हाथ से कपड़ा छूट गया और हरि बोल करने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर नाचने लगा वो, कि जब चेतन महाप्रभु का प्रेम मिल गया उसको तो क्या हो गया, भक्त बन गया और नाचने लगा। जब वो नाचने लगा हरि बोल गाने लग गाने का गा करके, तब चेतन महाप्रभु अपना काम कर गए और चले गए मंडली के साथ, फिर आगे बढ़ गए। अब वो नाच ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है। उसके बाद उसकी जो धर्म पत्नी थी वो दौड़ वो आ रही थी लंच लेकर के, एक कपड़ा में रोटी वोटी बांध करके खाना लेकर आ रही थी। जब अपने पतिदेव को नाचते हुए उछलते हुए ऐसे ऐसे देखा, क्योंकि बहुत दूर से देख रही थी तो आवाज तो नहीं सुन रही थी, लेकिन कहा कि हमारे जो पतिदेव जी हैं मुंह से कुछ बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो उसने सोचा कि मेरे पति को भूत पकड़ लिया है, बेचारी डर गई, वापस चली गई गाँव, घर वापस चली गई। जो वहां पे भूत भगाने वाली एक पार्टी होती है उनको बुलाया, पूरे गांव वालों को बुला के, भाई चलो हमारे पति जी क्या हो गया, ऐसे उछल उछल रहे हैं और कुछ बड़बड़ा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। सारे गांव के लोग ये सब देखने बड़ा मजा आता है, तमाशा है ना, सब जो है पूरे गांव वाले आ गए। तो कहे कहे तो भूत भगाने वाले जो थे कि लगता है आपके पतिदेव को कोई तगड़ा भूत पकड़ लिया है ना। तो वो सब आ करके खड़े हो गए, अब बेचारे से नाच रहा। तो उन्होंने कहा, भूत भगाने वालों ने पूरे गांव वालों ने कहा कि तुम उनकी पत्नी हो, अपने पति को जाकर पहले तुम पकड़ो है, पहले तुम पकड़ो है ना, उसके लिए डरना मत, हम लोग सब हैं सब संभालेंगे। तो उनकी जो पत्नी थी हिम्मत करके गई और अपने पतिदेव को पकड़ा, जैसे ही पकड़ा वो भी नाचने लगी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जैसे चुंबक होता ना, चुंबक लोहा छुआते जाए तो चुंबक की गुड़ भी आ जाता है, तो जैसे उसने स्पर्श किया वो भी नाचने लगी। अब पत्नी पत्नी दोनों हरि बोल बोलने लगे, दोनों हरि बोल नाचने, वो भी नाचने, वो भी नाचने लगे। तो जो भूत भगाने वाला था वो तो डर गया कि भूत तो बड़ा तगड़ा है, इसको भी पकड़ लिया। वो ऐसा सोचा कि इसको भी पकड़ लिया। तो उसने अपने चेलों से बोला, खुद जो मेन जो बास था वो नहीं गया, अपने चेलों बोला कि तुम लोग जाओ अब पकड़ो है ना, लेकिन डरना मत कि मैं हूँ, हमने बहुत से भूतों को भगाया हुआ है, बड़े बड़े भूत को हमने भगाया है ना। तो जैसे उन लोगों ने भी गया पकड़ा तो वो भी नाचने लगे है ना। तब तो भूत भगाने वाले जो गाँव के लोग हैं बड़ा ध्यान से देखे, कहे कि ये तो कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। सब ने कहा कि चल मैं देखता हूँ भाई इसे कैसे हो रहा है। तो जानते हैं सारे गांव के लोग एक साथ मिलकर पकड़ने लगे एक दूसरे को, तो जितने सब टच हो गए तो सारा गांव के गांव वहां कीर्तन करने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सब कीर्तन करने लगे। तो इससे क्या सिद्धांत है कि चैतन्य महाप्रभु में इतनी शक्ति थी कि जो एक बार उनसे मिल लेता था वो उनका हो जाता था है ना। एक बार स्पर्श करने से पूरे गांव का गांव बदल दिया चैतन्य महाप्रभु। और वही चैतन्य महाप्रभु जब और आगे निकले झारखंड के जंगलों से गुजरने लगे तो शेर हिरण हाँ मोर पिकाक सांप जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं एक दूसरे से खा जाते हैं सब साथ नचा दिया चैतन्य महाप्रभु ने। सब एक साथ नाच रहे हैं, हिरण और शेर एक साथ डांस कर रहा है, सांप एक साथ डांस कर मोर के साथ, जबकि मोर और सांप से नहीं पड़ती है। तो सब जो है एक साथ डांस, सारे जानवर पशु पक्षी सब एक साथ डांस करा दिया। तो हरि नाम में कितनी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। यही हमारे प्रभुपाद जी ने किया। हमारे प्रभुपाद जी जब अपने गुरु महाराज जी के उससे गए तो आज देखो प्रभुपाद जी ने रशिया चाइना जापानी सारे देश के लोग, वैसे सब एक दूसरे दुश्मन है, रूस अमेरिका एक दूसरे का दुश्मन है, लेकिन हमारे यहाँ प्रभुपाद ने क्या किया कि रूसी भक्त और अमेरिकन भक्त सब मिल करके क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरि नाम की शक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। जिस तरह से प्रताप रुद्र जी ने है ना स्वीकार कर लिया कि हाँ आप कह रहे हैं तो हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या है, कृष्ण ही है, अपूर्ण पुरुषोत्तम क्या है, अवतार ही है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। कोई प्रश्न, जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, श्री चैतन्य चरितामृत की, जय गौर प्रेमानंद।